नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार, इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत युवा तुर्कों का शासन नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। युवा तुर्कों का शासनकाल 1909 से 1918 के मध्य माना जाता है। सर्वप्रथम युवा तुर्क आंदोलन। 19वीं सदी में ही जब महान तुर्क साम्राज्य अधःपतन के गह्वर में जा रहा था, तो तुर्क नवयुवकों ने देशोद्धार के हेतु संघ न कायम किए। सर्वप्रथम जून 1865 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया में नूतन ऑटोमन समाज, सोसाइटी ऑफ न्यू ऑटोमन्स नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना हुई, जिसका नेता कमाल नामक प्रख्यात देशभक्त था। इस दल का मुख्य उद्देश्य देश में संवैधानिक राजतंत्र कायम करना था। 1872 ईस्वी में इसे तोड़ दिया गया, परंतु 1876 ईस्वी में अब्दुल अजीज के पद निष्कासन तथा अंततः अब्दुल हमीद द्वितीय द्वारा संविधान की स्वीकृति ने इस दल के आदर्शों को मूर्त रूप दिया। परंतु शीघ्र ही अब्दुल हमीद का क्रूर दमन चक्र चालू हुआ तथा 1889 ईस्वी में पुनः ऑटोमन एकता प्रगति समाज, ऑटोमन सोसाइटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस की स्थापना हुई तथा इसने तानाशाही के विरुद्ध प्रचार आरंभ किया। परंतु इसके सदस्य दमन चक्र के शिकार हुए और भागकर विदेश चले गए तथा वहीं से अपना प्रचार जारी रखा। शनैः शनैः देश में गुप्त संघ संस्थाओं का उदय होने लगा और सेना के तरुण अधिकारियों में क्रांतिकारी विचार पनपने लगे। ऑटोमन एकता प्रगति समाज की शाखाएं सारे देश में फैल गईं तथा इसी दल के नेताओं ने 1908 ईस्वी में क्रांति का झंडा उठाया। इस समय इस दल में मुख्य सदस्य अनवर, तलात, जमाल, नियाजी, शौकत पाशा एवं मुस्तफा कमाल थे। इनमें से अधिक सैनिक अधिकारी थे, अतः सुल्तान का सेना का भी भरोसा नहीं रहा। अंततः उसने 23 जुलाई 1908 ईस्वी को संविधान की घोषणा कर दी, जिससे सारे देश में उल्लास की एक लहर दौड़ गई। परंतु सुल्तान ने परिस्थिति की वास्तविकता को समझने में भूल की। उसने प्रतिक्रांति की चेष्टा की, फलस्वरूप उसे पदच्युत होना पड़ा और महमूद पांचवा गद्दी पर बैठा। महमूद पांचवे के समय में वास्तविक शक्ति तरुण तुर्कों के हाथ में आ गई। अनवर, तलात एवं जमाल के त्रिगुट ने शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिया। सुल्तान राज्यारोहण के समय 64 वर्ष की आयु का था, अतः राज्य कार्य में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रधान वजीर सैयाद हलीम भी तरुण तुर्कों की राह में बाधक नहीं होना चाहता था। सेना पर तरुण तुर्कों का प्रभाव था। इसके अतिरिक्त जब नवीन संविधान के अनुसार आम निर्वाचन हुआ, तो तरुण तुर्कों ने एक राजनीतिक दल स्थापित किया, जिसका नाम एकता प्रगति दल रखा, पार्टी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस। इस दल ने संसद में भी बहुमत प्राप्त कर लिया, अतः तरुण तुर्कों ने देश की संकटमय स्थिति में बागडोर संभाली और एक लौह चालित शासन का आरंभ किया, जो कि अंततः सुल्तान अब्दुल हमीद की निरंकुशता से भी अधिक भयंकर सिद्ध हुआ। युवा तुर्कों के समक्ष समस्याएं तथा उनका उद्देश्य। तरुण तुर्कों का वास्तविक उद्देश्य टर्की का पुनर्उत्थान तथा पतनोन्मुख गति का प्रत्यावर्तन था। वे देश में एकता एवं प्रगति लाना चाहते थे। तुर्क साम्राज्य में ईसाई, तुर्क, अरब, आर्मेनियन, कुर्द, यहूदी, असीरियन आदि विभिन्न जातियां एवं धर्मों के लोग निवास करते थे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था तथा बाल्कन प्रदेश के निवासी इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मुक्त संग्राम में कूद पड़े थे। धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावनाओं का प्रयास एशिया में भी हो रहा था। इस तरह तुर्क साम्राज्य के विघटन की सर्वांगीण भूमिका तैयार हो रही थी। साम्राज्य में अरबों की संख्या तुर्कों से भी अधिक थी और वे स्वराज्य के इच्छुक थे। यही दशा ईसाइयों एवं कुर्दों की भी थी। इस प्रकार वास्तविक तुरानी अथवा तुर्क जाति की संख्या थोड़ी थी तथा इस जाति के लोग रूसी क्षेत्र काकेशस में अधिकांश संख्या में निवास करते थे। अतः राष्ट्रीयता की भावना तुर्क साम्राज्य के लिए विनाशकारी थी। सुदूर पश्चिम हिस्से में नजद, शमर, यमन, हिजाज आदि प्रांतों पर तुर्की शिकंजा काफी ढीला पड़ गया था। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य देशों की साम्राज्य लिप्सा भी तुर्क साम्राज्य के लिए घातक थी। रूस, ईरान एवं कुस्तुनतुनिया पर दाव लगाए बैठे था। ब्रिटेन मिस्र, सूडान तथा ईरान की खाड़ी के क्षेत्र में पहले ही पांव पसार चुका था तथा फ्रांस ने अल्जीरिया तथा ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया था। इटली की नजर ट्रिपोली पर थी। इसके अतिरिक्त शेष बाल्कन देश भी साम्राज्यवादी जुआ फेंकने को तैयार थे। आर्थिक दृष्टि से भी तुर्की दिवालिया था। सुल्तान ने काफी कर्ज लिया था एवं आय के मुख्य स्रोत विदेशियों के कब्जे में थे। विदेशियों ने 18वीं सदी में जो विशेषाधिकार प्राप्त किए थे वे कायम थे। तुर्की चुंगी अथवा टैक्स स्वेच्छा से नहीं बढ़ा सकता था। इसके अतिरिक्त सेना में भी संघ न एवं अनुशासन का अभाव था, अतः इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अतः तुर्की में विनाश के प्रायः सभी तत्व वर्तमान थे। इन विभिन्न प्रभावों ने तरुण क्रांति के साथ ही स्तर उठाया। वास्तव में तुर्क विरोधी सभी शक्तियों ने क्रांति जनित उथल पुथल से लाभ उठाने के लिए कदम बढ़ाया। इससे आंतरिक एवं बाह्य कई समस्याएं आरंभ हुई तथा तरुण क्रांतिकारियों को अग्नि परीक्षा का सामना करना पड़ा। शीघ्र ही प्रथम महायुद्ध में तुर्की ने भाग लिया। तरुण तुर्कों ने रुग्ण साम्राज्य में नव जीवन डालने का जो स्वप्न देखा था वह पूर्ण नहीं हो सका तथा उनका स्वप्न विश्रृंखलित प्रयासों की कहानी मात्र रह गया। प्रारंभिक गृहनीति और अखिल ऑटोमनवाद पैन ऑटोमैनिज्म। तरुण तुर्क क्रांति के समय सारे तुर्क साम्राज्य में असंतोष की आंतरिक ज्वाला फैल रही थी। देश भर में गुप्तचरों का जाल सा बिछा था तथा मौलिक अधिकारों का कहीं नाम तक नहीं था। पश्चिमी भाग में नजद में इब्न सऊद ने स्वतंत्र रियासत कायम कर ली थी तथा यमन का भी इमाम विद्रोही था। ईसाई तथा अरब जातियों में स्वतंत्रता की चाह थी तथा बाल्कन प्रदेश युद्ध में रत थे। ऐसी दशा में सर्वप्रथम तुर्कों ने संवैधानिक समस्याओं एवं मौलिक अधिकारों पर जोर दिया तथा सभी जातियों को शांति एवं समृद्धि के साथ रहने का आह्वान किया। इस हेतु उन्होंने स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी का नारा अपनाया। यह नीति अखिल ऑटोमनवाद पैन ऑटोमैनिज्म की नीति के नाम से प्रसिद्ध है तथा इसका उद्देश्य साम्राज्य के सभी भागों एवं जातियों को केंद्रबद्ध करना था। प्रशासनिक केंद्रीकरण इसका मुख्य आधार था। यह नीति 1908 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक सर्वमान्य रही। क्रांति की सफलता के साथ ही सुल्तान के गुप्तचरों को बर्खास्त कर दिया गया और देश भर में मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई। 5 सितंबर 1908 ईस्वी को विदेशियों के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। देश में आम निर्वाचन किया गया तथा दिसंबर 1908 ईस्वी में संसद की बैठक बुलाई गई। विभिन्न जातियों में आपसी सौहार्द की भावना लाने के लिए समाज भी कायम किए गए, जिनमें ऑटोमन अरब बंधुत्व समाज प्रसिद्ध है। सुदूर प्रांतों में भी शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1908 ईस्वी में ही पैगंबर के वंशज शरीफ हुसैन को हजाज का अमीर नियुक्त किया गया और 1911 ईस्वी में यमन के इमाम के साथ भी शांतिपूर्ण समझौता किया गया। इस तरह नीति द्वारा संगठन की पूर्ण चेष्टा की गई, देश को ताकतवर बनाने के लिए सेना को पुनर्संगठित किया गया तथा जर्मन सेनापति लीमान वॉन सैंडर्स की अध्यक्षता में जर्मन विशेषज्ञों को शिक्षण के लिए बुलाया गया, परंतु यह नीति सफल नहीं हो सकी और अरबों का असंतोष दब नहीं सका। तुर्कों की संख्या संसद में अरबों से तिगुनी थी तथा विभिन्न उच्च पदों पर तुर्क ही विद्यमान थे, अतः वे समानता की मांग करने लगे। फलतः ऑटोमन अरब बंधुत्व समाज का अंत कर दिया गया, परंतु शीघ्र ही कई अन्य समाज स्थापित हो गए जिनमें अधिकांश गुप्त थे। अल मुंतदा अल अदबी, अल कुकतानिया, अल फतात आदि संस्थाओं ने अरब स्वराज्य के लिए प्रयास करना आरंभ किया। इसके केंद्र दमिश्क, बैक्त, कैरो और पेरिस में कायम हो गए तथा इनमें सैनिक अधिकारी भी शामिल हो गए। 1913 ईस्वी में पेरिस में अरब सम्मेलन हुआ तथा इसमें अरब प्रतिनिधियों ने स्वराज्य की मांग रखी। इसी समय बालकन प्रदेशों ने भी 1912-13 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया तथा यूरोप में पर्वी थ्रेस, ईस्टर्न थ्रेस को छोड़कर तुर्की साम्राज्य का नामो निशान नहीं रहा। इससे अखिल ऑटोमनवाद की नीति की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई, अतः इसका परित्याग कर दिया गया। शीघ्र ही तुर्की को प्रथम महायुद्ध में जूझना पड़ा तथा इस काल में भी परिवर्तन हुए। प्रथम महायुद्ध और तुर्क नीति 1914 से 1918 के मध्य। बालकन प्रदेशों के खोने के पश्चात तुर्क साम्राज्य में ईसाइयों की संख्या बहुत कम रह गई, अतः अखिल ऑटोमनवाद के स्थान पर अखिल इस्लामियत पैन इस्लामिज्म पर जोर दिया जाने लगा। अब तुर्क साम्राज्य के निवासी अधिकांशतः इस्लाम धर्मावलंबी थे, अतः साम्राज्य की धर्मगत एकता पर जोर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के अस्त्र का पुनः प्रयोग किया गया। जब तुर्की ने नवंबर 1914 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो उसके साथ ही साथ सुल्तान की ओर से विश्व के मुसलमान को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जिहाद के लिए प्रेरित किया गया। जर्मनी ने भी मुस्लिम युद्धबंदियों के साथ उत्तम बर्ताव की नीति अपनाई तथा उन्हें खलीफा के पास लौटा देने का तय किया। युद्धकाल में युवा तुर्कों ने इस नीति द्वारा आंतरिक एकता एवं वैदेशिक आंदोलन कायम करने की चेष्टा की। इस नीति का पूर्ण परिपालन किया गया और इसमें आंशिक सफलता भी मिली। युद्धकाल में कुर्द जाति ने स्वराज की मांग को तिलांजलि देकर धर्म विरोधियों के खिलाफ हथियार उठाए। आरंभ में अरबों पर भी इस प्रचार का प्रभाव पड़ा। आर्मेनियम एवं असीरियन जातियों पर ईसाई होने के कारण इस काल में भयानक अत्याचार किए गए तथा उन्हें लाखों की संख्या में कत्ल कर दिया गया। अधिकांश ने मित्र राष्ट्रों की शरण प्राप्त कर अपने प्राणों की रक्षा की। इस आंदोलन का प्रभाव यमन के इमाम इब्न रशीद, सूडान एवं लीबिया पर भी काफी पड़ा। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति भी तुर्की को मिलती रही तथा सैनिक परिणाम नहीं होने पर भी इसका राजनीतिक प्रभाव पड़ा तथा भारतीय सरकार ने तुर्की के विरुद्ध कदम उठाने में काफी सोच विचार से काम लिया, परंतु विभिन्न परिस्थितियों के कारण यह नीति सफल नहीं हो सकी। जून 1916 ईस्वी में शरीफ हुसैन के नेतृत्व में एक अरब विद्रोह का सूत्रपात हुआ जिसका उद्देश्य स्वतंत्र अरब राज्य स्थापित करना था। अरब जातियों ने इस विद्रोह का समर्थन किया तथा इसने भीषण रूप धारण कर लिया। इससे टर्की की सेना के अरब सैनिकों पर पूर्ण विश्वास करना असंभव हो गया। अब सिर्फ तुर्क जाति ही साम्राज्य का विश्वसनीय अंग रह गई। इसी समय अखिल तुर्कवाद, पैन टर्किज्म की भावनाएं जोर पकड़ने लगी तथा इस विचार को जिया गोक अल्प एवं हालिदे दीप के प्रचारों से काफी प्रश्रय मिला। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के फलस्वरूप काकेशस के तुर्क जातियों को टर्की के साम्राज्य में सम्मिलित कर नए तुर्क राज्य कायम करने की संभावना हुई। अतः नई नीति का शीघ्र ही प्रतिपालन किया गया और अब महत्वपूर्ण स्थानों पर सिर्फ तुर्कों को ही रखा गया। परंतु टर्की को जर्मन सलाहकार अखिल इस्लामियत के मूल्य को समझते थे, अतः उनके परामर्श से अखिल इस्लामियत का नारा भी साथ साथ लगाया जाता रहा। 1918 ईस्वी में काकेशस में टर्की को सफलता मिली और नए राज्य का स्वप्न साकार होता दिखाई दिया। परंतु अक्टूबर 1918 ईस्वी में युद्ध का अंत हो गया एवं पराजित टर्की ने 30 अक्टूबर को मुद्रोस की संधि को मान लिया। इस प्रकार शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य के स्वप्न को साकार करने के स्थान पर तरुण तुर्कों ने एक छत विक्षत एवं धाराशाही टर्की का सृजन किया, जो विश्व के राष्ट्रों के सम्मुख एक नया सरदर्द बनकर आया। युवा तुर्कों की बाह्य समस्याएं एवं वैधानिक नीति। जिस समय युवा तुर्क क्रांति हुई, उस समय टर्की के सम्मुख एक साथ कई वैदेशिक समस्याएं उठ खड़ी हुई। प्रथमतः 5 अक्टूबर 1908 ईस्वी को बल्गेरिया के शासक फर्डिनेंड ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और टर्की की संप्रभुता का अंत कर दिया। ऑस्ट्रिया ने भी बोस्निया एवं हर्जेगोविना को बर्लिन की संधि के शर्तों के विरुद्ध अपने साम्राज्य में मिला लिया। इससे यूरोप में एक भयानक राजनीतिक समस्या उठ खड़ी हुई और युद्ध मुश्किल से रोका जा सका। इस तरह टर्की के हाथ से ये दोनों क्षेत्र निकल गए। इन घटनाओं ने विदेशी राष्ट्रों के क्रांतिकारियों की निर्बलता का पर्दाफाश कर दिया। फलतः अन्य राष्ट्रों ने भी टर्की पर पंजा मारना आरंभ किया तथा साम्राज्य के अंदर यत्र तत्र विद्रोह होना आरंभ हो गया। 1910 ईस्वी में यवन एवं अल्बानिया में विद्रोह हो गया, जिसे बहुत कठिनाई से शांत किया जा सका। इसके बाद 1911 ईस्वी में इटली ने ट्रिपोली पर आक्रमण कर उसके तटवर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1912 ईस्वी में ग्रीस ने क्रीट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही ग्रीस नेता वेनिजेलोस ने 1912 ईस्वी में ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया और मॉन्टेनेग्रो को मिलाकर एक बालकन संघ कायम किया तथा मैसिडोनिया के संबंध में टर्की के सामने मांगे रखी, परंतु तुर्क नेताओं ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1912 ईस्वी में संघ ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसमें टर्की की जबरदस्त हार हुई। अप्रैल 1913 ईस्वी में लंदन की संधि हुई, जिसके अनुसार टर्की को कुस्तुनतुनिया को छोड़कर सारे यूरोपीय क्षेत्र से हाथ धोना पड़ा। अल्बानिया भी आजाद हो गया, परंतु शीघ्र ही बालकन संघ के सदस्यों में आपस में मतभेद हो गए तथा जून 1913 ईस्वी में द्वितीय बालकन युद्ध आरंभ हो गया। इसमें टर्की ने भी भाग लिया तथा अनवर एवं मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्क सेना ने बढ़कर एड्रियानोपुल पर कब्जा कर लिया। अंततः 1913 ईस्वी में अगस्त में बुखारेस्ट की संधि ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ और टर्की को पूर्वी थ्रास प्राप्त हुआ। यह टर्की के महाने यूरोपीय साम्राज्य का बचा खुचा अंश था। इस प्रकार क्रांतिकारियों के सम्मुख गिरते तुर्क साम्राज्य को संभालने एवं नवजीवन देने की भयंकर समस्या खड़ी हुई, जिसका समाधान अत्यंत ही जटिल था। इस हेतु तरुण तुर्कों ने सेना के पुनः संगठन पर जोर दिया तथा यूरोप के शक्तिशाली उदयीमान राष्ट्र जर्मनी से मित्रता एवं सहयोग का संबंध स्थापित किया। इस दिशा में उनकी नीति सुल्तान अब्दुल हमीद की नीति की आवृत्ति मात्र थी। जर्मन विशेषज्ञ एवं सलाहकार टर्की में भर गए एवं टर्की का झुकाव जर्मनी की ओर बढ़ता गया। अतः जब प्रथम महायुद्ध का आरंभ हुआ तो टर्की को शीघ्र ही उसमें कूदना पड़ा। प्रथम महायुद्ध एवं तुर्क वैदेशिक नीति। प्रथम महायुद्ध का आरंभ 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 1 अगस्त को जर्मनी शामिल हुआ, 2 अगस्त को टर्की तथा जर्मनी में एक गुप्त संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों देशों ने पारस्परिक मित्रता एवं सैनिक सहयोग का निश्चय किया। इस प्रकार टर्की मित्र राष्ट्रों का विरोधी बन गया और उसने उसके विरुद्ध कदम उठाना शुरू कर दिया। अब टर्की ने जल सेना के एडमिरल के पद से ब्रिटिश एडमिरल को हटा दिया एवं उसके स्थान पर जर्मन एडमिरल सूचो को नियुक्त किया। जर्मनी ने 2 विशाल युद्धपोत टर्की को दिए, जिनमें जर्मन सैनिक काम कर रहे थे। तरुण तुर्की मंत्रिमंडल के सदस्य अभी भी युद्ध में कूदने के लिए पूर्णतया सहमत नहीं थे, परंतु अनवर के प्रभाव के कारण तुर्क जलसेना ने 29 अक्टूबर को काला सागर स्थित रूसी जलसेना पर आक्रमण कर दिया। रूस ने 4 नवंबर को टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा 5 नवंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी रूस का अनुकरण किया। इस तरह तरुण तुर्कों के नेतृत्व में टर्की ने युद्ध में भाग लिया। वास्तव में अनवर एवं उसके सहयोगी युद्ध द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति चाहते थे। प्रथमतः उनका उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना एवं साम्राज्य के विभिन्न जातियों और धर्मों का समन्वय करना था। दूसरे, वे निकटस्थ मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस, साइप्रस एवं अल्जीरिया को प्राप्त करना चाहते थे एवं रूस स्थिति तुर्क प्रधान क्षेत्र काकेशस एवं तुर्किस्तान पर तुर्क आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। इसके साथ ही खलीफा के पद एवं मर्यादा सारे इस्लाम समुदाय पर पुनर्स्थापित करना भी उनका एक मुख्य उद्देश्य था। इस तरह इन उद्देश्यों की पूर्ति मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करके ही हो सकती थी। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर टर्की ने काकेशस एवं ईरान पर आक्रमण कर दिया। इस क्षेत्र में उसे प्रारंभिक सफलता भी मिली, लेकिन रूस ने प्रत्याक्रमण कर उन्हें वापस खदेड़ दिया। परंतु 1917 ईस्वी के लाल क्रांति से टर्की को इस क्षेत्र में मुक्त द्वार मिल गया। 3 मार्च 1918 ईस्वी की ब्रेस्ट लितोवस्क की संधि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लितोवस्क द्वारा रूस से काकेशस स्थित कार्स, अर्दहन एवं बाटम टर्की को प्राप्त हुए। परंतु इन क्षेत्रों के निवासियों ने गणतंत्र कायम कर लिया तथा जर्मनी भी इस क्षेत्र के तेल कूपों पर लोलुप दृष्टि डालने लगा। फिर भी तुर्क सेना ने 14 सितंबर 1918 ईस्वी को बाकू पर कब्जा कर लिया। परंतु अन्य क्षेत्रों में टर्की एवं जर्मनी की हार हो रही थी, अतः इसका लाभ स्थायी नहीं हुआ। इस प्रकार फरवरी 1915 ईस्वी में जमाल पाशा ने स्वेज नहर पर आक्रमण किया, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो सका। इसी समय टर्की एवं यमन की मिलीजुली सेना ने ब्रिटिश अधिकृत अदन बंदरगाह पर भी अल्फस आक्रमण किया। इस तरह किसी भी क्षेत्र में तुर्क सेनाओं को विशेष सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों ने डार्डेनल्स पर आक्रमण किया एवं गैलीपोली में फौज उतारने का प्रयत्न किया, परंतु इसमें उन्हें भीषण क्षति उठानी पड़ी और यह आक्रमण 1916 में खत्म हो गया। ब्रिटिश सेना ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया तथा बसरा पर अधिकार कर लिया, परंतु 25 अप्रैल 1916 ईस्वी को कत एल अमरा में एक ब्रिटिश फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार यहां भी उन्हें विफलता ही हाथ लगी। इस तरह 1916 ईस्वी के आरंभ तक मित्र राष्ट्रों को सैनिक सफलता नहीं मिल सकी, परंतु उन्होंने अपनी कूटनीति द्वारा अरब प्रदेश में टर्की के विरुद्ध भीषण विद्रोह का सूत्रपात किया, जिससे साम्राज्य छत विक्षत हो गया। अरब विद्रोह एवं टर्की। विशाल ओटोमन साम्राज्य में अरब जाति एवं नस्ल के लोगों की संख्या तुर्कों से भी अधिक थी। वे सारे अरब प्रायद्वीप में तथा विशेषकर सीरिया, इराक, लेबनान, हजाज, नज्द आदि प्रदेशों में भरे पड़े थे। उनमें धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय हो रहा था तथा साम्राज्य के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के समय में ही उनकी अनेक गुप्त संस्थाएं सीरिया में कायम हो गई थीं। तरुण तुर्क आंदोलन के बाद अरबों को टर्की में मिलाए रखने हेतु ऑटोमन अरब भ्रातृत्व संघ कायम किया गया और मक्का के शरीफ हुसैन को हजाज का अमीर नियुक्त किया गया। परंतु नवीन संसद में 245 सदस्यों में अरबों के सिर्फ 60 प्रतिनिधि रखे गए, जबकि तुर्की प्रतिनिधियों की संख्या 150 थी। सेना तथा शासन विभाग में भी उचित स्थान प्राप्त नहीं था, अतः उनमें असंतोष बढ़ता ही गया। 1909 ईस्वी के आरंभ में भ्रातृत्व संघ को भी खत्म कर दिया गया। फलतः अरबों ने कई गुप्त एवं प्रकट संस्थाएं कायम कर ली। अतमुंतदा, अल अदबी, अल कुतानिया, अल फतात आदि संस्थाओं ने अरबों के स्वराज्य के लिए आंदोलन आरंभ किए। 1913 ईस्वी में इन्होंने पेरिस में अरब सम्मेलन बुलाया तथा अपनी मांगों पर जोर दिया। ऐसी अवस्था में जब प्रथम महायुद्ध में टर्की ने प्रवेश किया तो साम्राज्य के प्रति अरबों की भक्ति डवाडोल थी। युद्ध के समय अदन एवं फारस की खाड़ी को छोड़कर सारा अरब प्रदेश टर्की के कब्जे में था, परंतु दूरस्थ क्षेत्रों में टर्की का प्रभाव नाम मात्र को था। हजाज में शरीफ हुसैन एवं नज्द में इब्न सऊद प्रायः स्वतंत्र थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने अरब असंतोष का लाभ उठाने की योजना बनाई। प्रथमतः 26 दिसंबर 1915 ईस्वी को ब्रिटिश भारत एवं नज्द के बीच कातिप का समझौता हुआ, जिसके मुताबिक इब्न सऊद ने ब्रिटेन से मित्रता एवं युद्ध में तटस्थता की नीति रखने का वचन दिया। बदले में एक सालाना रकम ब्रिटिश भारत ने निश्चित कर दी तथा सुरक्षा के वचन भी दिए। इस प्रकार उसकी तटस्थता एक अप्रत्यक्ष सहायता बन गई। परंतु शरीफ हुसैन के मामले में मित्र राष्ट्रों को अधिक सफलता प्राप्त हुई। उसके मंझले पुत्र अब्दुल्ला ने फरवरी 1914 ईस्वी में ही कैरो स्थित ब्रिटिश सेनापति किचनर से बात की थी तथा उसके छोटे पुत्र फैसल ने दमिश्क के अरब क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित कर लिया था। अंततः मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटिश दूत सर मैकमोहन और रेजिनॉल्ड विंगट ने शरीफ हुसैन में बातचीत आरंभ की। अंत में दोनों के बीच एक समझौता हुआ तथा शरीफ हुसैन ने अरब विद्रोह का आह्वान करने का वचन दिया। बदले में ब्रिटेन ने मित्र राष्ट्र की ओर से एक स्वतंत्र अरब देश की स्थापना करना स्वीकृत किया, जिसकी सीमाएं पूर्व में फारस की खाड़ी से लेकर पश्चिम में लाल सागर तक एवं उत्तर में अक्षांश 37 डिग्री से लेकर दक्षिण में अरब खाड़ी तक रखी गई। इसमें सीरिया के तटवर्ती क्षेत्र एवं पैलेस्टाइन नहीं थे। इसके साथ ही ब्रिटेन ने मुस्लिम तीर्थ स्थानों की सुरक्षा का वचन दिया तथा शरीफ हुसैन को मासिक 2,00,000 पाउंड देने का वचन दिया। इस समझौते के बाद 5 जून 1916 ईस्वी को शरीफ हुसैन ने अरब विद्रोह की घोषणा की एवं अरबों को टर्की के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। अमीर फैसल के नेतृत्व में एक अरब फौज का संगठन किया गया जिसे एक ब्रिटिश सेनापति लॉरेंस के अमूल्य सहयोग प्राप्त थे। इस सेना ने सितंबर तक मक्का, जिद्दा एवं अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया एवं मदीना पर घेरा डाल दिया। अपने अग्रज अली को घेरा का भार सौंपकर फैसल ने सीरिया की ओर प्रस्थान किया एवं ब्रिटिश फौज से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। इस विद्रोह ने तुर्क नेताओं को हतप्रभ कर दिया। उनके पवित्र युद्ध एवं जिहाद का नारा फीका पड़ गया। टर्की की सेना को अरब सैनिकों पर से अब विश्वास उठ गया। अरब सैनिक हजारों की संख्या में सेना छोड़कर विद्रोहियों के साथ मिलने लगे। नवंबर 1916 ईस्वी में शरीफ हुसैन ने अपने को अरब सम्राट घोषित कर दिया, परंतु अंत में ब्रिटिश हस्तक्षेप से उस पदवी का परित्याग कर दिया। इन घटनाओं ने टर्की के समक्ष कई समस्याएं खड़ी कर दी। जनवरी 1917 ईस्वी में सैयद हलीम ने प्रधानमंत्री पद का पदत्याग दिया। उसके स्थान पर जमाल पाशा प्रधानमंत्री बना। जर्मनी से कई योग्य सेनापतियों को बुलाया गया तथा अक्टूबर 1917 ईस्वी में जर्मन सम्राट कैसर स्वयं कस्तुंतुनिया आया, परंतु स्थिति पर काबू पाना आसान नहीं था और ब्रिटिश फौजों को रोक सकना असंभव हो गया था। 11 मार्च 1917 ईस्वी को बगदाद का पतन हो गया। 9 दिसंबर 1917 ईस्वी को जनरल अलनेबी ने जेरूसलम की तरफ बढ़ना आरंभ किया। इससे अक्टूबर 1918 ईस्वी के आरंभ में ही जमाल पाशा के मंत्रिमंडल का पतन हो गया तथा नए प्रधानमंत्री इजाद पाशा ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस समय तरुण तुर्कों का मान खत्म हो गया था तथा उनके विरुद्ध देशव्यापी क्षोभ था। ऐसी अवस्था में इजाद पाशा ने युद्ध के अंत करने का निर्णय किया एवं इस हेतु ब्रिटेन से वार्तालाप आरंभ किया। अंततः 30 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मुद्रोस की विराम संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ एवं सारे ऑटोमन साम्राज्य पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया। तरुण तुर्क नेता अनवर और तालात ने जर्मनी एवं जमाल ने अफगानिस्तान के लिए प्रस्थान किया और एक मित्र राष्ट्र नियंत्रण समिति अलायड कमीशन का कस्तुंतुनिया में आगमन हुआ। ब्रिटिश, फ्रेंच एवं इटालियन सैनिकों ने शीघ्र ही अनातोलिया तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह इस युद्ध का अंत हुआ एवं टर्की के भाग्य का निपटारा शांति सम्मेलन के जिम्मे छोड़ दिया गया। युवा तुर्कों के कार्यों का मूल्यांकन। युवा तुर्क नेताओं की असफलता के कारण उनके कार्यों की निंदा की गई है और उन्हें गैर जिम्मेवार एवं उच्छृंखल विकृत मस्तिष्क वाले के नाम से पुकारा गया है। उन्हें टर्की को विनाश के गर्त में पहुंचा दिया और एकता के स्थान पर विभाजन एवं फूट कायम किया। वे अरबों को संगठित करने में असफल रहे। उन्होंने उनमें विद्रोह की ज्वाला सुलगा दी। वे देश को युद्ध में झोंक कर लाखों तुर्कों की जान के ग्राहक बने और तुर्की में आर्थिक दिवालियापन ले आए। अतः उन्होंने सर्वत्र तबाही एवं बर्बादी कायम की। परंतु तरुण तुर्क क्रांति वास्तव में मरणासन्न तुर्क साम्राज्य की अंतिम लौ थी। सदियों से टर्की के विभाजन की तैयारियां हो रही थी और उसके आसन्न अवसान की प्रतीक्षा जारी थी। तरुण तुर्क नेताओं में नवजीवन लाने की अंतिम चेष्टा की। उन्होंने एकता एवं प्रगति पर जोर दिया। वास्तव में वे अपने उद्देश्य में काफी दूर तक सफल रहे। सर्वप्रथम उन्होंने टर्की को निरंकुश सुल्तान की शासन से मुक्ति दिलाई तथा देश पर विदेशियों द्वारा लादे गए अनुचित बंधनों को तोड़ दिया। देश भर में उन्होंने एकता का आंदोलन आरंभ किया और संवैधानिक शासन का उद्घाटन किया। उनकी क्रांति से देश में एक नवीन उत्साह और आशा का संचार हुआ और उन्होंने उन्हें पूर्ण करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त वैदेशिक नीति में जर्मनी से मित्रता वास्तव में उनका एक उचित कदम था। ब्रिटेन एवं रूस टर्की के अवसान ने लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। उनका स्वार्थ टर्की के पतन में निहित था। जर्मनी विश्व का सर्वशक्तिमान राष्ट्र था, अतः उससे मित्रता टर्की के लिए स्वाभाविक तथा अवश्यंभावी थी। जर्मनी ने आर्थिक एवं सैन्य संगठन में टर्की को अमूल्य सहायता प्रदान की तथा तुर्क सेना पुनः रणभूमि में टकराने योग्य बनाई गई। वास्तव में जिस गुट की सदस्यता प्राप्त की उसकी पराजय टर्की के दुर्भाग्य का कारण बन गई। टर्की जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया के पथ का पथिक बन गया। उसके सम्मुख कोई रास्ता नहीं था। मित्र राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां हर हालत में टर्की का अंग छेद करती। इस तरह तरुण ने टर्की की शक्ति पुनः स्थापित करने की जबरदस्त चेष्टा की, परंतु जर्मन गुट की पराजय ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। आइए अब अंत में यह जानने का प्रयास करते हैं क्या कारण थे कि तरुण तुर्कों का आंदोलन तुर्की में असफल हुआ। असफलताओं के कारण। तरुण तुर्कों की असफलता वास्तव में अवश्यंभावी थी। प्रथमतः उन्होंने एकता एवं प्रगति का लक्ष्य रखा, वह अत्यंत दुरूह था। टर्की में अनेक जातियां एवं नस्ल निवास करते थे जिनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रचलित थी। टर्की के यूरोपीय पड़ोसी इसके विघटन के इच्छुक थे, अतः तरुण तुर्क क्रांति के साथ ही बल्गेरिया की स्वतंत्रता, बोस्निया कांद, इटली का आक्रमण एवं बाल्कन युद्ध आदि समस्याएं एक साथ खड़ी हो गईं और टर्की को यूरोपीय क्षेत्र से प्रायः निकाल दिया गया। इस तरह क्रांति का आरंभ ही अपशकुन के साथ हुआ। एकता एवं प्रगति के लिए जितना समय अपेक्षित था वह टर्की को प्राप्त नहीं हो सका। सदियों से टर्की समाप्त का पतन जारी था, परंतु तरुण तुर्कों को क्रांति के बाद सांस लेने का भी अवसर नहीं मिला। बाल्कन युद्ध की समाप्ति होते होते प्रथम महायुद्ध की ज्वाला में टर्की पूर्णतया दग्ध हो गया एवं तरुण तुर्कों का प्रयास धूल धूसरित हो गया। वास्तव में ऐतिहासिक प्रवृत्तियां तुर्क साम्राज्य के विघटन की ओर बढ़ रही थी तथा उन्हें रोकना आसान नहीं था। दूसरे, तरुण तुर्क नेताओं ने कई प्रशासनिक भूलें भी की थी। उन्होंने केंद्रीयकरण पर जोर दिया। इस प्रवृत्ति ने एकता के स्थान पर भेदभाव के वातावरण को प्रश्रय दिया। देश में विभिन्न जातियां निवास करती थी जो अपनी संस्कृति की रक्षा चाहती थी। सच तो यह है कि केंद्रीयकरण ने उनमें भय का वातावरण पैदा कर दिया। इसके अतिरिक्त युद्ध की प्रगति के कारण तुर्क नेताओं ने विरोधियों का कठोरता से दमन किया, जिससे असंतोष की मात्रा में वृद्धि ही हुई तथा धीरे धीरे क्रांतिकारी नेता बदनाम होते गए। तीसरे, वे अरब को संतुष्ट करने में सफल नहीं हुए। उन्होंने संसद में तुर्कों की अपेक्षा अरबों का प्रतिनिधित्व कम किया। यह बहुसंख्यक अरबों को खलता था। उन्होंने अरबों की कई संस्थाओं को बंद कर दिया एवं अखिल तुर्कवाद की नीति द्वारा उनमें पूर्ण अविश्वास भर दिया। अंततः अरब विद्रोह ने साम्राज्य की एकता की नींव ही खो डाली एवं उसका कब्र तैयार कर दिया। इस तरह तरुण तुर्क क्रांति परिस्थितियों के विश्वासघात एवं क्रांतिकारी नेताओं की भूलों के जाल में उलझकर असफल हो गया। परंतु इस क्रांति ने नवीन टर्की का आधार प्रस्तुत किया जिस पर आधुनिक टर्की का निर्माण हुआ। इसके साथ ही युवा तुर्कों का शासन जिनका शासनकाल 1909 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य माना जाता है, नामक अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।